नमस्कार भारत, आज है 15 अक्टूबर दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पीएम मोदी का बिहार में नीतीश कुमार ने किया भव्य स्वागत, लेकिन पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग से बीजेपी जेडीयू के बीच सियासी समीकरण पर उठे सवाल।
आने वाले दिनों में असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव में क्या नीतीश कुमार जी के जितने डिमांड एमएलए और एमपी के होंगे वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी?
मनमोहन सिंह ने कहा प्रणब मुखर्जी हो सकते थे उनसे बेहतर प्रधानमंत्री। जेएनयू छात्र नजीब अहमद के लापता होने के एक साल पूरे, मां को अभी भी है उनके लौटने की उम्मीद।
उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द सारे लोगों की दुआएं पूरी हो जाए, कबूल हो जाए, नजीब घर वापस आ जाए, जल्दी से मैं घर बैठ जाऊँ, थक चुकी हूँ।
सुनिएगा न्यूज मेकर्स भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। ऑस्कर पुरस्कार देने वाली संस्था ने हॉलीवुड के चर्चित प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को निष्कासित करने के पक्ष में फैसला लिया है। यूएस एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के सदस्यों में से दो तिहाई से अधिक सदस्यों ने वाइनस्टीन के तुरंत निष्कासन का समर्थन किया। अमरीकी अभिनेत्री रोज मैकोवन ने वाइनस्टीन पर होटल के एक कमरे में उनका बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उनके अलावा कई और अभिनेत्रियों ने भी उन पर यौन हिंसा के आरोप लगाए हैं। ऑस्कर एकेडमी का कहना है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण करने वाले व्यवहार से जानबूझकर अनजान बने रहने और शर्मनाक तरीके से इसमें सहभागी बनने का दौर अब खत्म हो चुका है। आइवरी कोस्ट के मुख्य शहर अबिजान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक एक मालवाहक विमान समंदर में गिर गया। हादसे में कम से कम चार लोग मारे गए, जो सभी मालदोवा से थे। हादसे में चार फ्रांसीसी व्यक्ति घायल हुए हैं। दुर्घटना स्थल के नज़दीक लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बचाव काम में मदद करने पहुंचे मार्क नानगुए बताते हैं। सवेरे का समय था, हम मछली पकड़ रहे थे। हमने धुआं देखा और फिर आसमान से सफ़ेद रंग का कुछ गिरा। हमें लगा ये कोई अभ्यास चल रहा है। जब हम पानी से बाहर निकले, हमने देखा पानी पर कुछ शव तैर रहे थे। मेरे चाचा ने कहा हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए। हमने उन्हें निकाला। हमें उम्मीद थी कि वो जिंदा होंगे। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मर चुके थे। ये थे आइवरी कोस्ट के मार्क नानगुए के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी मोगादिशु में हुए दो बम धमाकों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। पहला धमाका मोगादिशु में एक होटल के पास हुआ, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये भीड़भाड़ वाला इलाका था। एक अन्य धमाका मदीना जिले में हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। देश में इससे पहले कथित चरमपंथी समूह अल शबाब ने कई धमाकों को अंजाम दिया है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के सुदूर में स्थित ब्रितानी द्वीप सेंट हेलेना की हवाई पट्टी पर पहली व्यावसायिक उड़ान ने सफलतापूर्वक लैंड किया है। दक्षिण अफ्रीका से उड़ा यह विमान शनिवार सेंट हेलेना के नए एयरपोर्ट पहुंचा। उम्मीद की जा रही है कि प्रत्येक सप्ताह आने वाली इस उड़ान से सेंट हेलेना में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। अब तक सेंट हेलेना से आने जाने के लिए जहाज का इस्तेमाल किया जाता था, जो 3 सप्ताह में एक बार ही जाता था। ब्रितानी क्षेत्र की गवर्नर लीजा फिलिप ने इसे एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत कहा है। उन्होंने कहा मुख्य रूप से इससे इस द्वीप के पर्यटन उद्योग में बदलाव आएंगे। आप जानते हैं फिलहाल बस कुछ 100 लोग ही इस द्वीप पर अपना समय बिताने आते हैं, लेकिन इस नई सेवा के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हजारों लोग यहां आएंगे और पर्यटकों के कारण आने वाले अतिरिक्त धन से द्वीप पर रहने वालों के रहन सहन के स्तर में भी बेहतरी होगी। ये थी ब्रितानी क्षेत्र की गवर्नर लीजा फिलिप। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी कीनिया के एक स्कूल में स्कूल के सुरक्षाकर्मी और 5 छात्रों पर गोली चलाने के आरोप में पकड़े गए एक व्यक्ति को लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया है। पुलिस ने इस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रखा था, जहां लोगों की भीड़ घुस आई और इस व्यक्ति पर हमला कर दिया। बीते शनिवार दक्षिण सूडान से सटे कीनिया की सीमा के पास लाकचोकियो में एक स्कूल पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिनमें ये व्यक्ति भी शामिल थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना विश्वविद्यालय में मौजूद थे। मौका था पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह का। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया और सैकड़ों छात्रों की उपस्थिति में उन्होंने उनसे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का आग्रह किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री के स्वागत की जो गर्मजोशी शुरुआत में नीतीश कुमार के हाव भाव में नजर आ रही थी, मोकामा पहुंचते पहुंचते वो बदलती सी नजर आई। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो नीतीश ने गुलाब का फूल देने के बाद जिस अंदाज में उनसे हाथ मिलाया, वह इन दोनों नेताओं की नई दोस्ती की गर्माहट बयान कर रहा था। इसके बाद दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की तारीफ भी की।
मैं नीतीश जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभारी हूँ कि भारत सरकार की सभी योजनाओं को हर प्रकार का उनका सहयोग रहा, समर्थन रहा।
लेकिन जानकारों का मानना है कि पटना से मोकामा पहुंचते पहुंचते पीएम और सीएम की दोस्ती की गांठ कुछ ढीली पड़ने लगी थी। नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से यह मांग की थी।
इसलिए हम लोगों को खुशी है कि पहली बार पटना विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री आए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए।
वरिष्ठ पत्रकार सुरू रहमत बताते हैं कि मांग पूरी न होने का एक असर यह भी रहा कि मोकामा पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिमांड नीतीश कुमार ने किया, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं माना, तो उससे कुछ मामला लगा कि जो बॉडी लैंग्वेज नीतीश के जो मोकामा वाले प्रोग्राम में थे वो नहीं रहा। मोकामा के प्रोग्राम में हो ये क्या कि वो जितनी क्रेडिट थी डेवलपमेंटल स्कीम्स की सब का सब बीजेपी ले गई, जिसको वो पॉलिटिकली इन कैश नीतीश कुमार अब नहीं कर सकते जैसा वो पहले किया करते थे।
दोस्ती के इन बदलते रंगों पर बिहार के विपक्षी दलों ने भी चुटकी ली। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को बेवकूफ बनाया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधायक शकील अहमद खां का कहना है कि भाजपा की रणनीति नीतीश को कुछ देने की बजाय जान पहुंचाने की है।
आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बिहार में खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर के सरकार बना ले। नीतीश जी से मिलना उस डिजाइन का हिस्सा है और उस डिजाइन में वो नीतीश जी को कुछ देने होने वाले हैं नहीं। आने वाले दिनों में असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव में क्या नीतीश कुमार जी के जितने डिमांड एमएलए और एमपी के होंगे वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी?
माना जाता है कि इस नई दोस्ती का एक बड़ा सियासी इम्तिहान लोकसभा चुनाव के दौरान होगा, क्योंकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अभी भाजपा गठबंधन के पास 31 सीटें हैं। ऐसे में तब नरेंद्र मोदी के पास अपने नए सहयोगी नीतीश को देने के लिए बहुत ही कम सीटें होंगी, जबकि पहले नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में रहते हुए भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
और अब चर्चा दो बयानों की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री न बनाए जाने पर प्रणब मुखर्जी के पास दुखी होने के जायज कारण थे, क्योंकि वो इस पद के लिए ज्यादा योग्य थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द कोएलिशन ईयर्स की रिलीज के मौके पर उन्होंने ये बात कही। इसी किताब में प्रणब मुखर्जी ने भी लिखा है कि सोनिया गांधी के पद ठुकराने के बाद सबको यही लगा था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से संपर्क किया और इन वक्तव्यों का आशय जानना चाहा।
देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रणब मुखर्जी ने कहा उसमें यथार्थ है, सच्चाई है, और जो मनमोहन सिंह जी ने कहा उसमें भी यथार्थ और सच्चाई है। ये बात सच है कि प्रणब मुखर्जी सार्वजनिक जीवन में मनमोहन सिंह जी से कहीं ज्यादा आगे थे। ये भी बात सच है कि मनमोहन सिंह यहाँ तक एज एन इकोनॉमिस्ट वो शायद प्रणब मुखर्जी से बेहतर थे, लेकिन प्रधानमंत्री होने के लिए सार्वजनिक जीवन में एक लंबा इनिंग्स बहुत जरूरी होता है, और शायद उस लिहाज से मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि प्रणब मुखर्जी डिजर्व करते थे प्रधानमंत्री बनना, लेकिन वो स्वयं प्रधानमंत्री हो गए और उसमें उनकी कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उनको पार्टी की तरफ से निर्देश था।
क्या राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल रहा वो उनके कांग्रेस नेता की छवि से बिल्कुल अलग सा रहा? मतलब कई बार ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी से उनके कुछ अतिरिक्त अच्छे संबंध हैं।
देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री और किसी भी राष्ट्रपति के बीच में रस्साकशी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन में तब्दील हो सकती है। इन दोनों के बीच में तावन बहुत जरूरी है, इनके बीच में तालमेल बहुत जरूरी है ताकि निजाम चलता रहे। हमारे इतिहास में एक दो ओकेजन को छोड़ के राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की चॉइस का होना पड़ेगा। हाँ, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की रबर स्टैंप भी नहीं हो और उसका एडवर्सरी भी नहीं हो, ये हमको सुनिश्चित करना है। मेरा ये मानना है कि प्रणब मुखर्जी एक निर्णय को छोड़ के जो उत्तराखंड में सरकार उन्होंने बर्खास्त की थी, उन्होंने एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट अपना रोल निभाया।
क्या कहीं प्रधानमंत्री ना बनाए जाने की एक किस्म का जो मलाल था, क्या इसके पीछे ये ऐसा कहा जाना उचित होगा?
मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने कोई भी प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से कोई इंप्रेशन नहीं दिया कि वो सरकार की गोद में बैठे हुए राष्ट्रपति हैं या वो प्रधानमंत्री के कहे अनुसार काम कर रहे हैं।
इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू प्रणब मुखर्जी ने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 132 साल पुरानी पार्टी है और वो बाउंस बैक करेगी। ये क्या ये आखिरी प्रतीक के तौर पर इसको माना जा सकता है कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी थे और कांग्रेसी ही हैं?
जब राष्ट्रपति बनने वाले थे, जब उनका नाम घोषित हो गया था, तो कुछ हम लोगों से वो मिले थे और उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि आई विल रन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंसी। और उसके बाद एक ऐसा खास इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने एक टेलीविजन शो में जाकर शिरकत की और जहां प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे और उस टेलीविजन शो के प्रमुख फेस जो है वो भी थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने कुछ बातें कही। तो उसके बाद मैं उनसे मिला था और मैंने कहा ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंसी वाली बात नहीं हुई ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई थी। जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि वो 132 साल पुरानी पार्टी है, वो तो इतिहास है, वो तो सब जानते हैं और इस बात को भी सब जानते हैं कि जो इतनी पीढ़ियों से जो पार्टी चल रही हो और जिसने शिरकत की हो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, वो पार्टी जो है एकदम से गायब नहीं होने वाली।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। जैसलमेर के मांगणियार लोक गायक अमद खान की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ सकी है। जैसा हमने अपने श्रोताओं को पहले बताया था कि वो नवरात्रि के दौरान 27 सितंबर को दांतल गांव में कार्यक्रम करने गए थे और वहीं आयोजकों की फरमाइश पूरी न कर पाने के कारण कथित तौर पर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जबकि हत्या के अभियुक्तों का कहना है कि अमद खान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इस घटना ने लंबे समय से मिलजुल कर रहते आ रहे मांगणियार मुसलमानों और राजपूतों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमद खान की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, बल्कि सिर पर चोट लगने की वजह से हुई। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली दांतल गांव गए थे। हमारी सहयोगी मानसी दाश ने उनसे हालात की जानकारी के बारे में बात की।
देखिए मानसी, ऐसा है कि दांतल गांव जाने के बाद दो चार चीजें साफ होती हैं। जैसा कि हमने पहले अपने श्रोताओं को सुनाया, जो मांगनियार थे उनका पक्ष, जो उनका इल्जाम था कि गांव वालों ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया, इसलिए मजबूरी में हम वहां से भागे। गांव वाले जो थे उनसे हमारी बात हुई। कई गांव में ज्यादातर जो है राजपूतों की संख्या है वहां, उसके अलावा भील भी हैं और ये जो सुथार, तो हमारी राजपूतों से ज्यादा बात हुई। तो उनका ये कहना था कि ये बात तो सही है कि उसकी मौत हुई है, मगर वो ये कह रहे हैं कि ये मौत जो है उसको दिल की बीमारी थी और अचानक से उसको हार्ट अटैक हो गया। कुछ बहस हुई थी लेकिन दोनों के बीच, यानी कि रमेश सुथार जो कि भूपा और अमद खान के बीच में, किसी तरह की मारपीट नहीं हुई थी और उसके बाद उन्होंने दफन भी किया। और उन्होंने वो इस तरह से इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मांगनियार थे उनसे पैसों की मांग कर रहे थे, वो लोग इस बात के लिए तैयार भी थे कि सारे गांव के लोग मिलके कुछ 10-12 लाख की रकम दे देंगे, लेकिन उनकी मांग ज्यादा थी और वो बड़ी सजा चाहते थे इनको देना, जो रमेश सुथार और उसके परिवार वालों को, जो कि मुमकिन नहीं हो पाया और उन्होंने जो है FIR दर्ज करा दी।
ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ?
27 तारीख को ही, यानी के वो अमद खान को वहाँ गांव की जो कुल देवी हैं वहाँ पर जो है जागरण हो रहा था नवरात्रि का, और वहाँ बुलाया गया गाने के लिए और ये वो गया, और गाने के बाद जो है वहाँ किसी तरह की बहस हुई। जैसा कि पुलिस से हमारी जो बात हुई, जैसे SHO से गिरधर सिंह से आज, उनका ये कहना था कि मारपीट हुई और वो रमेश सुथार ने उसको मारा और ये गिर गया अहमद खान, और गिरने के बाद उसको चोट आई, लेकिन उसके बाद फिर सब साथ गए और उसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई और इसने दवा मांगी और सब दवा लेके गए और उसकी मौत हो गई। लेकिन इसमें दो चार चीजें जो है मानसी ध्यान देने वाली, वो ये है कि 27 तारीख को कहा जा रहा है कि रात के 10:30 से 11 बजे के बीच में इसकी मौत हुई। दूसरे दिन दफन भी कर दिया गांव वालों ने, मतलब उसके परिवार वालों ने। मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो कई दिनों के बाद, यानी कि FIR 2 तारीख को दर्ज हुआ है। तो इस बीच में किसी न किसी तरह के समझौते की बात होती रही है जो शायद नहीं हो पाया।
आप आज गांव में गए और आपने गांव के हालात और गांव का जो सोशल फैब्रिक है उसको बहुत अच्छे से देखा होगा, क्या आपको कहीं से ये सांप्रदायिक मामला कुछ लगा?
पहली बार देखने पर ऐसा नहीं लगता मानसी कि ये सांप्रदायिक मामला था। ये मामला उसी तरह का था कि अमीर और गरीब का मामला, गांव के कुछ बड़े लोगों का मामला, जिनके हुक्म और जिनकी इच्छा के खिलाफ कुछ वो लोग जो कि बहुत अमीर नहीं है और साथ ही साथ उन पर आश्रित हैं, क्योंकि मगनियार जो है वो गाना बजाना गाते हैं अपने यजमानों के यहाँ। यजमान ज्यादातर जो है राजपूत हैं, या जो ये सुथार जो कि बढ़ई जाति के हैं, बढ़ई का काम करते हैं, ज्यादातर इनके पेट्रन जो है वो हिंदू हैं। तो उनकी जो बात नहीं मानने का था वो था।
दांतल गांव से जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर नजर डाल लेते हैं। सुर्खियां बताने के लिए मानसी दास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी मानसी, क्या कहते हैं आज के अखबार?
पहली खबर लेती हूं जनसत्ता अखबार से। अखबार में खबर छपी है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने आखिरी दौर में है। कश्मीर घाटी में चरमपंथियों के मारे जाने के संबंध में वे कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। खबर के अनुसार उन्होंने कहा, आतंकवादी भागते फिर रहे हैं और जबरदस्त दबाव में हैं। मुझे यकीन है कि यह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का आखिरी चरण होने जा रहा है। एक और खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। इसके अनुसार पाकिस्तानी सरकार ने जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को नज़रबंद करके रखने के फैसले को जारी रखने संबंधी अपनी याचिका को वापस ले लिया है। भारत हाफिज सईद को 2008 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड मानता है, जिसमें 174 लोगों की मौत हो गई थी। अखबार के अनुसार इसी साल जनवरी में हाफिज सईद और उनके 4 सहयोगियों को नज़रबंद किया गया था। और पंजाब सरकार के गृह विभाग का अब कहना है कि सरकार को चरमपंथ रोधी कानून के तहत उन्हें और नजरबंद रखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है जिसके अनुसार केंद्र सरकार अब राज्यों को केंद्रीय राजस्व का उनका हिस्सा 3 महीने में एक बार ट्रांसफर करेगी, और अगले वित्त वर्ष से शुरू होने वाली इस व्यवस्था के कारण अब राज्य सरकारें जो है चिंता में पड़ गई हैं। अखबार ने वित्त मंत्रालय में अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि राजस्व ट्रांसफर करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरा करने के लिए कई बार केंद्र को कर्ज लेना होता है, लेकिन अगर राज्यों को धन देने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया जाए तो इससे GST के लागू होने से मिले राजस्व के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक और खबर आपको बता दूं कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गोमांस ले जाने के शक में कथित गोरक्षकों ने 5 लोगों को बुरी तरह पीटा है। इन 5 लोगों में एक ऑटो ड्राइवर शामिल है जिनका नाम है आजाद। इन्हीं के ऑटो में 4 लोग सफर कर रहे थे, और जो आजाद हैं उनका कहना है कि गोरक्षकों ने उनसे गोमाता की जय कहने के लिए कहा। उनका आरोप है कि पुलिस के आने के बाद भी गोरक्षकों ने उन्हें पीटना नहीं छोड़ा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक और खबर मैं ले लेती हूँ, मेरे पास कुछ समय है अभी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में जो पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है उससे संघ पूरी तरह सहमत नहीं है और इस पर संतुलित विचार होना चाहिए। उन पटाखों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जिनसे प्रदूषण होता है, उन पर नहीं जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता।
अखबारों की समीक्षा के लिए मानसी दास आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद को गुमशुदा हुए 1 साल पूरा हो गया है। नजीब पिछले साल JNU में मारपीट की एक घटना के बाद से गायब हैं। कल नजीब की मां और कुछ लोगों ने दिल्ली के CBI मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा वहां पहुंचे और उन्होंने नजीब की मां फातिमा नफीस से बात की।
साल तो जिंदगी का सबसे तकलीफ देह साल है ये, और बदलाव में जो रिश्तेदार मेरे अपने खून के रिश्ते हैं वो मेरे मुझे दूर नज़र आ रहे हैं, इंसानियत के रिश्ते मेरे करीब हैं, बहुत करीब। मेरे जो आज जो मेरे साथ हैं वही मेरे अपने हैं, वही मेरे रिश्तेदार हैं, वही मेरे बच्चे हैं, सारे रिश्ते मेरे उनसे ही हैं जो मेरे साथ यहाँ खड़े हैं एक साल से अब तक।
नजीब जब दिल्ली आए होंगे तो अपने साथ बहुत से ख्वाब भी लाए होंगे और उनसे आपके ख्वाब भी जुड़ेंगे, वो ख्वाब अब कहाँ हैं?
मेरे ख्वाब अभी भी मेरी आँखों में हैं, नजीब इंशाल्लाह आएंगे। पढ़ाई का तो नहीं कह सकती कि मैं उन्हें छोड़ूंगी अब, लेकिन हाँ नजीब के साथ जो मैंने उनके ख्वाब देखे थे, उनके बच्चों की परवरिश करूँगी, उनके साथ जो लम्हे मैंने गुजारे हैं वो जो उनको नहीं दे पाई उनके बच्चों को दूंगी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला मेरे वो ख्वाब पूरे करेगा, बस उम्मीद करती हूँ। अल्लाह बेहतर जानने वाला बेहतर करने वाला है, वो बेहतरीन सलाह देगा। मेरा जीव जहाँ भी होगा उसकी पनाह में है, बस मैंने उसके हवाले किया था वो जब घर से निकला था। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, तो थक गई हूँ बहुत थक गई, उससे चला नहीं जाता। मजबूर हूँ कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो आप लोग मेरे बगैर खड़े नहीं होंगे, मैं हूँ तो ये लोग मेरे सब साथ हैं। उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द सारे लोगों की दुआएं पूरी हो जाएं, कबूल हो जाएं, नजीब घर वापस आ जाए, जल्दी से मैं घर बैठ जाऊँ, थक चुकी हूँ।
नजीब की माँ फातिमा नफीस को पूरी उम्मीद है कि नजीब लौट कर जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हर घर में शौचालय का सपना देखा जा रहा है और दूसरी ओर आलम यह है कि 5 बार के सांसद की बेटी और मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। बात मध्य प्रदेश के अनूपपुर की है जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे परिवार के साथ खुले में शौच के लिए जाती हैं। वो 5 बार सांसद रहे दिवंगत दलपत सिंह परास्ते की बेटी हैं। सुनिए शुरै नियाजी की रिपोर्ट।
दलपत सिंह परास्ते मध्य प्रदेश के शहडोल से भाजपा के सांसद रहे। उनकी पुत्री रूपमती सिंह मरावी इस वक्त अनूपपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। रूपमती अपने परिवार के साथ खमरोद गांव में रहती हैं। उन्हें 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि रूपमती अपने परिवार के साथ खुले में शौच करने अब तक जाती रही हैं। उनका कहना है कि अभी तक शौचालय का निर्माण का काम अधूरा था इसलिए वो बाहर जाती थी, लेकिन अब लगभग पूरा हो चुका है।
मेरे एक लड़का एक लड़की है और फिर हम पति पत्नी दोनों, तो हम लोग पहले से पापा जी के साथ में रहते थे तो नहीं बनवा पाए थे सर, गाँव में नहीं बनी थी, पापा जी के यहाँ रहते थे तो बन गई। अब बाहर ही जाते थे, पापा जी के साथ में रहते थे तो वहीं रहते थे, फिर जब गांव जब गए हैं तो गाँव में बनवा लिए हैं। नहीं बन गया है, थोड़ा सा अपूर था बनने में।
आंकड़े बताते हैं कि जिले में अब भी तकरीबन 1.5 लाख घर ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं है। वहीं बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो खुले में शौच के लिए जाते हैं। प्रदेश में पिछले 14 सालों से सत्ता में भाजपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार शौचालय निर्माण पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अनूपपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष का पूरा परिवार खुले में शौच के लिए जाता है। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राहुल कोठारी इसे स्वच्छ भारत अभियान की विफलता नहीं मानते हैं।
देखिए, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि हमारा स्वच्छता अभियान फेल हुआ है। भारतीय पार्टी की सरकार में भरपूर प्रयास किया गया इस बात का कि जन जागरूकता लाई जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात की कमी आती है, क्योंकि सामाजिक जागरूकता जब आती है बात तो बहुत सारे लोग अपने आप में जो है वो पुरानी ही पद्धति पे चलना चाहते हैं, और विशेषकर जहाँ पर पानी की समस्या है उसमें कहीं ना कहीं ये बात दिक्कत कर रही है। लेकिन जिस तरीके से पंचायत में स्वच्छता और पेयजल के लिए काम हुआ है वो अनुकरणीय काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है।
पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश में खुले में शौच करने के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। पिछले महीने प्रदेश में 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, उन्हें यह सजा खुले में शौच करने की वजह से मिली। एक मामले में आरोपी खुद शिक्षक था तो दूसरे में पत्नी के खुले में शौच में जाने की सजा शिक्षक पति को मिली और उसे निलंबित कर दिया गया। वहीं एक दूसरे मामले में बैतूल जिले में एक परिवार पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ग्राम पंचायत रंभाखेड़ी के कुंवरलाल साहू के परिवार में 10 लोग हैं। यह परिवार खुले में शौच करता था, पंचायत की हिदायत को नजरअंदाज कर रहे थे। 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जोड़कर 1 महीने का 75,000 रुपए जुर्माना का नोटिस इन्हें दे दिया गया। शुरहनिया जी बीबीसी न्यूज भोपाल।
मशहूर अभिनेता अनुपम खेर को पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का नया चेयरमैन बनाया गया है। न्यूज मेकर्स में सुनिए उनसे बातचीत।
यूँ तो इस हफ्ते आपने कई सारी खबरें पढ़ी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन एक खबर हम आपके लिए चुन के लाए हैं और ये है अनुपम खेर के बारे में, जो बने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII के नए चेयरमैन। हमारी तरफ से लख लख बधाइयाँ। अनुपम खेर से जब ये पूछा गया कि उनको कैसा लगा जब इस गुड न्यूज के बारे में उनको पता चला।
स्मृति जी का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप ये कार्यभार संभालिए, बिकॉज हम वी वांट टू मेक अ डिफरेंस और आपने काफी काम किया है, तो मैं खुश था।
और वहाँ जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इस सवाल के जवाब में उनका सिर्फ यही कहना है,
सफेद स्लेट के साथ इस पे जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मुझे क्या कैसे करना है, क्या करना है, बट कहते ना कि इरादे नेक हों तो अपने आप रास्ता मिल जाता है और अपने आप मंजिल हासिल करने की कोशिश हो जाती है।
वैसे तो अनुपम खेर ने अपनी जिंदगी में कई सारी कोशिशें की, भाई एक्टिंग के फील्ड में जाना है ये भी एक नेक कोशिश थी, और अब सामने है एक नया चैलेंज। FTII पुणे का एक्टिंग संस्थान, जो एक्टिंग के लिए तो जाना ही जाता है लेकिन अपने विवादों की वजह से भी जाना जाता है।
मैं उस बैगेज के साथ चलना ही नहीं चाहता कि आज से पहले क्या हुआ। मैं एक नए सिरे से इसकी शुरुआत करना चाहता हूं और नए सिरे से इसको मैं एक मुकाम तक ले जाना चाहता हूं, और वो मुकाम तक मैं अकेले नहीं पहुंचना चाहता, अकेले पहुंच भी नहीं सकता। उस सबके लिए मुझे वहां के टीचर्स की, वहां के स्टूडेंट्स की, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, और स्ट्रगल के एक्सपीरियंस को भी शेयर करना चाहता, क्योंकि बाहर आके हम सबको काम की जरूरत है, और उस काम जो है मेरे हिसाब से एटीट्यूड से मिलता है, टैलेंट बाद में आता है। तो मे बी आई विल शेयर माय एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स वर्क।
और FTII के स्टूडेंट्स को भी आपसे काफी उम्मीदें हैं।
आई वांट टू गो देयर एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स वो मुझसे चाहते क्या है। मैं फैसिलिटेटर की तरह उनका काम करना चाहता हूँ।
अनुपम खेर ने 500 से ज्यादा फिल्मों और कई नाटकों में काम किया है, और अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पे वो बॉलीवुड में आज भी काफी बिजी रहते हैं। तो फिर इसी के साथ दीजिए इंदु पांडे को इजाजत, फिर से मिलने के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
बीबीसी न्यूज मेकर्स।
22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के साथ शुरू हो रहे वनडे सीरीज के लिए किस खिलाड़ी को मिली है टीम में जगह, और अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कल BCCI ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रही 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में KL राहुल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव जगह बनाने में नाकाम रहे, लेकिन तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक 15 खिलाड़ियों में जगह बनाने में कामयाब हो गए। टीम की कमान विराट कोहली संभालेंगे, जबकि रोहित शर्मा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर अन्य खिलाड़ी हैं। उधर इन दिनों भारत में खेले जा रहे अंडर 17 फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल ग्रुप ई में गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में फ्रांस ने होंडुरास को 5-1 से मात दी। इस तरह फ्रांस ने 9 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहते हुए अगले दौर में जगह बनाई। इसी ग्रुप में कल कोलकाता में जापान और न्यू कैलेडोनिया 1-1 से बराबरी पर रहे, लेकिन जापान 4 अंकों के साथ दूसरे दौर में जगह बनाने में कामयाब रहा। इसी ग्रुप से होंडुरास भी 3 अंकों के साथ अगले दौर में पहुंची। कल ही ग्रुप एफ में कोलकाता में इंग्लैंड ने इराक को 4-0 से मात दी, लेकिन गुवाहाटी में मेक्सिको और चिली गोल रहित बराबरी पर रहे। इस ग्रुप से इंग्लैंड ने 9, इराक ने 4 और मेक्सिको ने 2 अंकों के साथ अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। इसी के साथ इस विश्व कप में पहले दौर के सभी मुकाबले भी समाप्त हो गए। आज विश्व कप में विश्राम का दिन है। कल राउंड ऑफ 16 में कोलंबिया का सामना जर्मनी से और पराग्वे का सामना अमेरिका से होगा। वहीं ढाका में खेले जा रहे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से और बांग्लादेश का सामना जापान से होगा।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। ऑस्कर पुरस्कार देने वाली संस्था ने हॉलीवुड के चर्चित प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को निष्कासित करने के पक्ष में फैसला लिया है। आइवरी कोस्ट के मुख्य शहर अबिजान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक एक मालवाहक विमान समंदर में गिर गया है। हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। सोमालिया के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी मोगादिशु में हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के सुदूर में स्थित ब्रितानी द्वीप सेंट हेलेना की हवाई पट्टी पर पहली व्यावसायिक उड़ान ने सफलतापूर्वक लैंड किया है। तालिबान के कब्जे से छुड़ाए गए कनाडाई नागरिक जोशुआ बोयल अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ वापस अपने देश पहुंच गए हैं। उनके तीन बच्चों का जन्म कैद के दौरान हुआ था। बताया जा रहा है कि उनके सबसे छोटे बेटे अभी अस्वस्थ हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर यह प्रसारण आप तक पहुँचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।